मंत्र और उसका प्रयोग। मंत्रों की शक्ति अमोघ होती है। मंत्र जप के द्वारा अभीष्ट देवता का सुजुज सरलता से प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः मंत्र देवता की ध्वन आत्मक परतमा अथवा वायवीय स्वरूप होता है। एक सुनिश्चित गति लय विराम उच्चारण ध्वनि आरोह अवरोह और आसन मुद्रा के नियमों का विधिवत पालन करते हुए जब किसी मंत्र का जप किया जाता है तो उसका प्रभाव सुनिश्चित और अवट होता है। यह बात अलग है कि आज मंत्रों के मर्मांग या मर्मज्ञ नहीं के तुल हैं, किंतु इससे मंत्रों की शक्ति उपादेयता और प्रमाणिकता पर कोई आंच नहीं आती। यह सत्य है कि मुद्रण कला के चरम विकास में आज अगणित ग्रंथ प्रकाशित करके मंत्र साहित्य को कर कर गली गली और फुटपाथों तक सुलभ कर दिया है, किंतु इसमें लाभवंत होने वाले ज्ञान खोजने पर भी सरलता से नहीं मिलते। इसे मंत्र साहित्य की विडंबना ही कहा जाएगा और इस विडंबना का मूल कारण है प्रकाशित साहित्य का पर्याप्त समक्ष न होना। वह व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे पाता। पुस्तकें पढ़ने के बाद भी साधु को असफलता ही मिलती है। उनके द्वारे किए गए मंत्र जब का लाभ प्रभाव अनुभव नहीं होता। खींच कर वे मंत्र साहित्य की निंदा करते हैं। वे समझते हैं और दूसरे को भी समझाते हैं कि मंत्र साधना केवल एक टकौंसला है और कुछ नहीं। वस्तुतः उसकी सफलता का एकमात्र कारण होता है मंत्र उच्चारण की विधि का समुचित ज्ञान न होना। पुस्तकों में छपा मंत्र उच्चारण, पुस्तकों में छपा साहित्य पढ़ा तो जा सकता है, किंतु वह उच्चारण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे सकता। वह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष से संपर्क करके प्रत्यक्ष रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ज्ञान प्रदाता व्यक्ति को गुरु की संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्राचीन काल में जब मुद्रण कला का जन्म नहीं हुआ था, गुरु वर्ग मौखिक रूप में अपनी शिष्य मंडली को मंत्र उच्चारण तथा अन्य साधना विधानों का ज्ञान प्रदान करता था। यही कारण है गुरु शिष्य परंपरा के चलते मंत्र विद्या का अचूक प्रभाव दृष्टिगत होता था। शताब्दियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी तक यह परंपरा मौखिक ज्ञान प्रदान पद्धति इसी प्रकार चलती रही थी। आज हम जितनी भौतिक चकाचौंध देख रहे हैं उससे कहीं अधिक प्रभावी वह मंत्र साधना होती थी। बाद में आहार वकार के असंयम ने मन की धारणा शक्ति क्षीण कर दी। वह प्रमादी और बलासी हो गया। अहम भाव की उत्पत्ति हो जाने से गुरु सेवा साधना संयम और तपश्चर्या उसे भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, किंतु लोभ यथावत प्रबल था, फलता वह सहज साधना का शॉर्टकट का न्यायी तो हो गया और मात्र पुस्तकों को ही गुरु मानकर साधना का रेडीमेड लाभ उठाने का प्रयास करने लगा, किंतु पुस्तकें गुरु की समता नहीं कर पाई। फलता गुरु प्रसाद से वंचित साधक आज भी मोटे मोटे पोथे बगल में दबाए सफलता की मरीचिका में पटक रहे हैं। असफलता ने उन्हें कुंठित कर दिया है, साधना से उनका विश्वास टूट गया है। इस भगनाश और आत्म पीड़ा से व्यथित होकर अब वे अध्यात्म की निंदा का अभ्यास चला रहे हैं। कुछ जो अधिक जागरूक हैं उन्होंने भद्रता की चादर ओढ़ ली है और उसी पुस्तकीय ज्ञान को अडंबर के द्वारा रोचक मोहक बनाकर जन समान को अपने बाग बलास से प्रभावित करके द्रव उपार्जन करते रहते हैं। निसंकोच कहा जा सकता है कि ऐसे लोग अध्यात्मक व्यवसायी हैं। गुरु की अनिवार्यता ऊपर युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि क्योंकि मंत्र ध्वनि से संबंधित है, अतः इसका व्यवहार ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब साधु किसी मंत्र मर्माग से प्रत्यक्ष दीक्षा ग्रहण करे। पतनाचार कोर्स कम से कम अध्यात्म के क्षेत्र में तो सफल नहीं हो सकता, अन विष्णु के वह कुछ आशा दे भी सके। अतः साधना के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह परमावश्यक होगा वह किसी को गुरु के रूप में स्वीकार करके उसके निर्देशक में ही साधना करे। मंत्र उच्चार के अतिरिक्त भी कई एक ऐसी समस्याएं शंकाएं आ पड़ती पड़ी होती है कि साधक दृढ़ परमत हो जाता है। ऐसी स्थिति में गुरु का व्यक्ति तक नौर ज्ञान प्राणकारी होता है। गुरु की अनिवार्यता ज्ञान के क्षेत्र में सर्वत्र स्वयं सिद्ध है, चाहे भौतिकी ज्ञान हो चाहे अध्यात्म। कहीं भी बिना मार्ग निर्देशक के कोई जिज्ञासु या साधक आगे बढ़ ही नहीं सकता। अस्तु यंत्र मंत्र तंत्र भौतिक विज्ञान गृहस्थ जीवन अथवा कोई भी क्षेत्र हो, सबसे प्रथम तद विषयक मर्मज्ञ विद्वान की खोज करनी चाहिए। विद्वान का अर्थ डिग्री धारी न होकर उसका ज्ञानी होना ही पर्याप्त है। किसी भी योग सदाचारी शांत विशिष्ट और सौम्य विद्वान विद्वान से पहले ही वह साधु तपस्वी न होकर गृहस्थी हो, मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करके उसके मार्गदर्शन में यदि जब तक पूजन अनुष्ठान किया जाए तो ऐसी साधना निश्चित रूपेण फलदायिनी होती है। साधना के सूत्र विश्वास। विश्वास का अर्थ है उपास के प्रति आस्था श्रद्धा और भक्ति की भावना, बिना इसके कोई साधना सिद्ध नहीं होती। भले ही उस में लाखों रुपए खर्च किए जाएं, दें। जिस ग्रह की साधना करनी हो उसे संबंधित दिन विशेष रूप में प्रभावकारी होता है। मंत्र, प्रत्येक ग्रह के अलग अलग मंत्र हैं। अभीष्ट ग्रह की अनुकूलता के लिए उसी मंत्र का जपना श्रेय पर होता है। मंत्र अंतर से साधना में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। यंत्र, मंत्र की पंक्ति ग्रह विशेष की उपासना हेतु उसी का यंत्र बनाना और पूजन करना चाहिए। व्यक्ति, क्रम से साधना खंडित हो जाती है। पूजन सामग्री, ग्रह पूजन में अपने अभीष्ट ग्रह से संबंधित पूजन सामग्री ही लेनी चाहिए। अंत पदार्थ दोष के कारण लाभ नहीं हो पाता। रत्न, रत्नों का प्रयोग बड़ा जटिल विषय है। गहरी छानबीन और संयोग विद्वान के परामर्श पर ही रत्न धारण करना चाहिए। किसी भी ग्रह के विपरीत रत्न धारण करने से वह हानिकारक भी हो जाता है। तांत्रिक प्रयोग, ग्रह उपासना में तांत्रिक प्रयोगों का भी बड़ा महत्व है, परंतु ये प्रयोग तभी प्रभावशाली होते हैं जब वर्णित विधि से के अनुसार वस्तुओं का प्रयोग तथा अन्य नियमों का पालन किया जाए। दान सामग्री, पूजन उपरांत अथवा ऐसे ही सहज भाव से दान स्वरूप दी जाने वाली वस्तुएं ग्रह अनुसार निर्दिष्ट की गई है, अतः इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जिस ग्रह के निमित्त दान दे रहे हैं हमारी वस्तुओं उसके पूजन विधान में स्वीकृत है या नहीं, प्राण हो जाने से हानि की शंका रहती है। कुछ विशिष्ट परिभाषक शब्द, ब्रह्मांड, खगोल और ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में तथा भौतिक विज्ञान और पौराणिक प्रसंगों के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द प्रचलित हैं जो अनेक अर्थी हैं। स्थान, संदर्भ और आदेश के अनुसार इनके अर्थ की प्रभावशीलता घटती बढ़ती रहती है। ऐसे शब्द सात्विक, संस्कृत, धर्म दर्शन, योग, ज्योतिष और भौतिक विज्ञान के प्रसंग में प्रायः प्रयुक्त होते रहते हैं। पाठकों की सुविधा के लिए उनमें से कुछ अति विशिष्ट और प्रयोजनीय शब्दों के अर्थ जहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ब्रह्मांड, अंडाकार भुवन कोश, जैसे मनुस्मृति के मतानुसार पतन में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। विश्व गोलक संपूर्ण विश्व, खोपड़ी मानव शरीर के सिरोपा का ऊपरी मत, अंतरिक्ष पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान, आकाश अदृश्य बाहर मैदान में खड़े होने पर आकाश की ओर देखने की दृष्टि, पर्द में आने वाला महाशून, उल्का लोक लूका लौज्वाला लोह मिश्रित प्रस्तर खंड जो अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, मसाल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाला तारा, सौर मंडल के प्रधान तारों में से कोई भी एक, नौ की संख्या प्राप्ति पकड़, चोरी लूट का माल नामादि कथन, कड़ियाल शंका अद्वसाय मकान और कार, बोध राहु बाल ग्रह राशि, समान जाति की बहुत सी वस्तुओं का ढेर, कराती वृत्ति में आने वाले विशेष तारा समूह 12 राशियों में से कोई भी एक शेष वृक्ष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन राशि चक्र आकाश का वह कटिबंध जैसे ग्रह तारे गतिशील प्रतीत होते हैं। आकाश शब्द गुण युक्त प्रथम महाभूत पांच महाभूतों में से एक शून ईथर आसमान अवकाश छिद्र अरंदर आकाश संगा आकाश के छोटे छोटे ग्रहण तारों का समूह जो उत्तर दक्षिण में फैला हुआ दिखता है। आकाश में तारों की चौड़ी पट्टी सड़क जैली जैसी आकाश वाहनी गंगा मंदाकिनी निहार का आकाश में कोहरे अथवा तुम्हें की तरह छाया हुआ दीख पड़ने वाला प्रकाश पुंज गुप्त नक्षत्रों का उपादान जनक अथवा घटत ध्रुव स्थिर अचल एक बाल तपस्वी जो मेरु पर प्रतिष्ठित है निश्चित पक्का दृढ़ कठोर सदा एक रूप शाश्वत एक विशेष तारा जो सदैव उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर सदैव रहता है। पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी सिरे आकाश विष्णु शिव ब्रह्म काट वृक्ष आठ वसुओं में बट वृक्ष आठ वसुओं में से एक शरीर पक्षी सथानु फूट रोमा वर्त पंभरी ज्योतिष में बारमा योग उत्तर फालुनी उत्तर अखाड़ा उत्तर भादरा नक्षत्र और सूरज जग पात्र गीत का आरंभ अंश नासागर नक्षत्र आकाश स्थित कुछ विशिष्ट तारक पुंज इनकी संख्या 27 मानी जाती है। 27 विशेष तारा पुंजों में से कोई भी एक मोती 27 मोतियां से बना हार तारा रात के समय आकाश में चमकने वाला जाग को ज्योतिर्पिंड ज्योतिर्पिंड नक्षत्र सितारा भाग आंख की पुतली मोती तंत्र शास्त्र में वर्णित दश महा विद्याओं में से एक बृहस्पति की पत्नी वानर राज बाली की पत्नी का नाम इंद्रधनुष बरसात के समय प्राय आकाश में दृष्टिगोचर होने वाला सतरंगा अर्थ व्रत सौर चादर सौर जाति विशेष की मछली सूरज के से संबंध सूरज के उत्पन्न सूरज को अर्पित सूर्य देवता का उपासक सूरज की गति का अनुसरण करने वाला देवता संबंधी स्वरा मद्रा से संबंधित सूरज पूजक व्यक्ति शनि ग्रह बीसवा कल्प और कन्या तंबाकू जम मंत्र शमु सूर्य के संबंध रखने वाले मंत्र दाहिनी आंख एक अंश प्रकाश या भौतिक शक्ति जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिख पड़ती है ज्योति समान पदार्थों से उत्पन्न शक्ति जो आकाश तत्व ईथर के द्वारा चारों ओर फैलती है तेज आलोक ज्योति जला आत्म धूप काश आविर्भूत स्पष्ट प्रगट में अभिव्यक्त ख्याति प्रसिद्ध शीतल अटहास चमक अंधा कौंध ज्योति प्रकाश रोशनी 976 अग्नियों की पुतली का मध्य बिंदु दृष्टि आत्मा चेतन मेथी विद्युत ज्योतिष शास्त्र आगम ज्ञान वेदाद ग्रंथ दर्शन शास्त्र तंत्र शास्त्र न्याय शास्त्र ये चारे प्रमाणों में एक सिद्धांत शब्द साधना जाल उत्पत्ति संचय वृद्धि आमदनी संयोग प्राप्ति उपलब्धि और अनाज आना आगमन आशाखाद पत्र उपक्रम निगम वेद वेदांग वेद संत न्याय शास्त्र रश वर्षस्थ पथ मार्ग हाट बाजार मेला समूह चुंड कारवा काफला बंजारा संस्था कारपोरेशन वेद अर्थ बोध ग्रंथ चाणक पथ चंत्र ग्रंथ आदित ब्रह्म गणेश रुद्र विष्णु उपनिषद ब्रह्म विद्या प्राप्त हेतु गुरु के पास बैठना वेदों के ज्ञान खंड वाले ग्रंथ वेद रहस्य ब्रह्म ज्ञान निर्जन स्थान देव व्रती की बेकर्तव्य कर्तव्य जो ब्रह्मचारी के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट कारण्य है एक संस्कार विशेष समीप भवन संगता संधि संयोग मेला मिलना संग्रह संकलन प्रम शो शोथित गद संकलन कर्मशास्त्र वेदों का मंत्र भाव मनुवादि प्राचीन महर्षियों द्वारा रचित कर्मशास्त्र कार्य विधान विश्वास कटत शक्ति मंत्र कार्य में सफलता पाने की कुंजी कार्य सिद्धि का गुरु सलाह परामर्श मंत्रणा गुप्त वार्ता कानून किए में कहे जाने वाली बात वह शब्द या शब्द समूह इसका आचरण करने से किसी देवता की सिद्धि या अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो वेद का संगता भाव उपदेश उपदेशात्मक संकेत विशेष मंत्र शब्द को लेकर विभिन्न नए शब्दों की रचना की हुई है जो किसी न किसी रूप में मंत्र साधना से संबद्ध क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। मंत्राकार मंत्र दृष्टा मंत्र दृषि मंत्र पूत मंत्रधारी मंत्रक मंत्र जेवा मंत्र बीज मंत्र मूल मंत्र शक्ति मंत्रधार मंत्र साधना मंत्र संस्कार मंत्र संस्कारों का विवरण यह है कि जनन जीवन ताड़न बोधन अभिषेक बिमली वरण अप आयन तर्पण दीपन गोपन मंत्र विधि मंत्र कर्षत मंत्र जल मंत्र सिद्धि मंत्र स्नान मंत्र सूत्र मंत्र सिद्धि मंत्रोदक अष्टागंध योग जम निजम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा त्यमन और समाधि योग साधना के अंतर्गत ये क्रियाएं अष्टांग योग योग के आठ अंग कहलाती है। आवाहन आह्वान पुकारना बुलाना आमंत्रित करना पुकार बुलावा देवता का आवधान अदालत में हाजिर होने का आदेश तलब नामा ललकार नाम चुनौती आने के लिए कहना विनय व्यापारी व्यवसायी प्रथकरण यतीन्द्रिय आज्ञा पालन नम्रता आचरण प्रार्थना विधिवत आदेश सभी कर्म स्वीकार कर्म क्षिपत दुर्वर्त गुपत मार्गदर्शन अनुशासन शिष्टता पद्धराचरण नम्र शब्दों में निवेदन और गोत्ति उस्तुति प्रशंसा स्तोत्र गुण कथन दुर्गा शिव प्रार्थना चरुपार्ता स्त्रोत्र उस्तुति युक्त श्लोक छंद ज्ञान ग्रंथ जिसमें छंद बद उस्तुत की गई हो उस्तुत पर्क ग्रंथ स्तवन स्तोत्र पाठ करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, चिंतन करना, किसी कल्पना में तन्मय हो जाना, किसी विशेष पर गंभीरता पूर्वक सोचना, स्मरण करना, शंका चित्त की मन स्थिति, प्रार्थना मांगना, जांचना करना, किसी बात को कामना पूर्ण हेतु नियम पूर्व कहना, कल्याण करना, स्वयं अथवा पहरे के प्रति विनय भगत और श्रद्धा पूर्वक निवेदन करना, ईश्वर देवी देवता अथवा राजा से किसी बात के लिए अनुनय करना, अभिमान सिंगा अकर्मण, एक मुद्रा विशेष इच्छा लालसा चाह कामना दावा अभिजोग। कितना विशाल है आत्मा का जीवन, कितना लंबा, कितना अनादि और अनंत। ओ मृत्यु से डरने वालों, नरोक्त के इन शब्दों को देखो कि मृत्यु के संबंध में तुम्हारा पैर कितना निरर्थक है। मृत्यु के पश्चात जीवन, जीवन के पश्चात मृत्यु, डरने की कोई बात नहीं, पैर की बात है। तो जन्म और मृत्यु का ये चक्कर, जब तक ये चक्कर चलता रहेगा तब तक दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए नरोक्त के इस श्लोक में ज्ञान रखने वाले भक्त ने पुकार के कहा है, बहुत बार मैं मरा हूँ, सहस्रों लाखों शरीर मैंने देखे हैं, सहस्रों लाखों जूनियों में गया हूँ, कितने ही प्रकार के मैनू को मैंने भोजन खाए हैं, कितने ही सतनों का दूध पिया है, कितनी ही प्रकार की कितनी माताएं मैंने देखी है, कितने ही पिता, कितने ही मित्र, कितने ही सुंदी, कितनी ही बार उल्टा होकर लटका हूँ, कितने ही संगतों को मैंने सहा है, परंतु इन संकटों और अपतियां का अंत ईश्वर से मिलो बिना, ईश्वर से मिले बिना कैसा होगा, कभी नहीं हुआ, होगा नहीं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही बनता चला जाता है। साधु जैसे कर्म कारण वाला धीरे धीरे साधु हो जाता है, बुरे कर्म वाला सने सने बुराई का रूप बनने लगता है। यथाचारी तथा भक्ति साधु कारी साधु भक्ति पापकारी पापी भवति पुना पुनेन कर्मणा भवति पापः पापेन